नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये युधिष्ठिर जी राजा हो गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पधार गए। पीछे से व्यास जी महाराज ने कहा कि पांडवों, हिमालय के पास मरुत नाम के एक राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसमें बहुत सोना पड़ा है, व्यर्थ में पड़ा है। तुम लोग वीर हो, धर्मात्मा हो और राजा हो, जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं होता उसका राजा मालिक होता है। उस संपत्ति को लाओ और खूब बड़े बड़े विशाल अच्छे अच्छे यज्ञ करके उस संपत्ति का सदव्यय करो, अच्छे काम में खर्च लगाओ। तो युधिष्ठिर जी महाराज वगैरह सब गए और हिमालय के पास पहुंच गए। सारा वहां का सोना जितना उनको मिला बड़ी बड़ी संदूकों में बंद कर लिया। 60,000 ऊंट थे, 60,000, 1,20,00,000 घोड़े थे, 1,00,000 हाथी, 1,00,000 रथ, 1,00,000 छकड़े और उतनी हाथनियां, सब पर माल लदा। गधों की और मनुष्यों की तो गिनती नहीं थी। युधिष्ठिर ने जितना धन खुदवाया था उसका उन्होंने अनुमान ही नहीं लगाया। प्रत्येक ऊंट पर 8,000, प्रत्येक छकड़े पर 16,000, प्रत्येक हाथी पर 24,000 सोने का भार लदा हुआ था। इसी प्रकार घोड़ों, गधों, मनुष्यों पर जितनी जितनी उनकी शक्ति थी उतना उतना सोने का भार रखा। 8 मण का एक भार होता है, तो जितनी जितनी उनकी शक्ति थी उसके अनुसार रखा। फिर भी वो वहां बहुत सा सोना फिर भी बच गया, ला नहीं सके। महादेव जी का पूजन किया और फिर व्यास जी की आज्ञा से पुरोहित धर्म के अनुसार वे हस्तिनापुर चले गए। इधर भगवान जब द्वारिका में आए थे तब वसुदेव जी ने पूछा कि भाई हमने सुना महाभारत क्या हुआ, कैसे हुआ, तो खूब विस्तार के साथ उन्होंने वसुदेव जी को सब बता दिया। ऐसे ऐसे भीष्म जी मरे, ऐसे द्रोणाचार्य मरे और ऐसे अभिमन्यु को मारा गया, सब बात बता दी। वसुदेव जी ने बड़े दुखी होकर अभिमन्यु का श्राद्ध किया, उनका दोहिता था। बलराम जी ने भी, सात्यकी ने भी, सब ने अभिमन्यु का श्राद्ध किया। अभिमन्यु की मृत्यु पर बलराम जी को भी बहुत दुख हुआ। इधर एक बात और हुई कि जो उत्तरा के गर्भ में बालक था, अभिमन्यु का पुत्र था, वो गर्भ के अंदर क्षीण होने लगा। होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, पर वो क्षीण होने लगा तो अपने गर्भ का नाश देख करके उत्तरा बहुत घबराई और रोने लग गई। कुंती ने उसको समझाया, पर उसको दुख हो रहा था, तो हो ही रहा था, कुर्सियां लगा दो कोई, लोगों ने बैठने में आराम रहे। तो बहुत रोई बिचारी, उसी समय ब्यास जी आए। ब्यास जी ने कहा कि रो मत, दुखी मत हो, कृष्ण का प्रभाव और मेरे आशीर्वाद से यही तुम्हारा गर्व आगे जाकर पृथ्वी का महान शासक बनेगा, पांडवों का उत्तराधिकारी यही होगा, कोई चिंता मत करो। इधर ये हस्तिनापुर आ ही गए, भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण भेजा कि महाराज आओ, हम यज्ञ करना चाहते हैं। तो भगवान यदुवंशियों को साथ में लेकर हस्तिनापुर आ गए, यहां तक की कथा हो गई थी। उनके द्वारिका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने जैसी बात कही थी उसके अनुसार अश्वमेध यज्ञ का समय निकट जानकर वे पहले ही उपस्थित हो गए। भगवान के साथ रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न, सात्यकी, चारुदेश, सांब, गद, कृतवर्मा, सारण, निषट, उल्मुक, बलराम जी तथा जिनके पति युद्ध में मारे गए थे, उन अनाथ क्षत्रिय क्षत्राणियों को ढाढ़स बांधने के लिए आए। इनके आने का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र महामना विदुर जी ने आगे बढ़कर बड़ा स्वागत किया। महान तेजस्वी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों सहित वहां युयुत्सु और विदुर के साथ रहने लगे। जन्मेजय विष्णु वंशियों के हस्तिनापुर में रहते समय तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का जन्म हुआ। वे ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने के कारण मुर्दे के रूप में पैदा हुए थे। इनकी मां का रोना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि गर्भ का तो विकास होना चाहिए था, ये एकदम क्षीण होते होते चेष्टाहीन मुर्दे के रूप में ये लोथड़ा बाहर आया। पहले तो सब लोग बड़े हर्षित हुए, बड़ा आनंद का उत्सव किया, लेकिन किसी ने आकर बताया कि वो बच्चे का क्या आनंद मनाते हो, इसके जीवन का कोई लक्षण ही नहीं है, न सांस की गति है, न नाड़ी की गति, वो तो लोथड़ा जैसे पड़ा है। तो सारे परिवार में शोक छा गया। जब श्री कृष्ण ने सुना तो वे सात्यकी को साथ में लेकर महल में पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बुआ कुंती को अपने पास वेग से आते देखा और कृष्ण का बार बार नाम लेकर अरे कृष्ण आओ, दौड़ो दौड़ो, ऐसे पुकार मचा रही थी। द्रौपदी, सुभद्रा और दूसरी स्त्रियां भी बड़े करुण विलाप करती हुई दौड़ रही थी, बिलख रही थी, रो रही थी। कृष्ण जब इनके पास पहुंचे तो कृष्ण के अपनेपन से सबकी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी, झड़ी सी लग गई। और कुंती ने गदगद वाणी में कहा, हे वासुदेव, तुमको पाकर तुम्हारी माता देवकी उत्तम पुत्र वाली मानी जाती है, देवकी को कितनी खुशी हुई थी जब तुम्हारा जन्म हुआ था, किसी मां को अपने बतपुत्र को जन्म देने पर कितना आनंद होता है, परिवार के दूसरे लोग उस पुत्र के मुख देखने के लिए कितनी कितनी मनोतियां मनाते हैं, तुम देवकी के यहां उत्पन्न हुए, हम लोगों को कितनी खुशी हुई, हमारे सारे कुल का भार तुम्हारे पर है। और ये अभिमन्यु का बालक जो अश्वत्थामा के प्रयत्न से मरा हुआ उत्पन्न हुआ है, केशव, इसको जीवन दान देना पड़ेगा। बिलखती हुई कुंती ने कहा, केशव, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा है, लेकिन कुल की रक्षा के लिए मैं इसका जीवन दान मांगती हूं। इसलिए भी मांगती हूं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से जो हमारे वंश की हानि की है, उसका ये दुर्भाव भी तो नष्ट होना चाहिए। कल में वो फिर ऐसा ही प्रयत्न करेगा। कृष्ण, अब तुम्हें हमारे वंश की रक्षा करने का भार वहन करना ही पड़ेगा। एक बार तुमने कहा था कि अश्वत्थामा भले ही ब्रह्मास्त्र चला दे, मैं उत्तरा के मरे हुए बालक को भी जीवित कर दूंगा। तुम तो द्वारिका चले गए। बड़ा अच्छा हुआ आज ही तुम आए, आज इस बालक का जन्म हुआ। देखो ये मरा हुआ पैदा हुआ है। तुम अपनी अमृतमयी दृष्टि तो डालो, इसे जीवित करो। हमने अभिमन्यु के जीवित रहने के लिए आपसे कभी प्रार्थना नहीं की, लेकिन अब हमारा वंश खत्म हो रहा है, इसलिए आज बहुत करुणित होकर आपसे प्रार्थना करती हूं। मेरे हृदय की जलन मिटेगी, द्रौपदी के हृदय की जलन मिटेगी, सुभद्रा के हृदय की जलन मिटेगी, और तुम्हारे भांजे की पत्नी उत्तरा के हृदय की जलन मिटेगी। युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, सभी के प्राण बचाओ। वंश बचेगा, वो वंश में ही तो प्राण है। मेरे और पांडवों के प्राण स्वरूप इस बालक को मरा हुआ देखकर हमारी छाती फटी जा रही है। मेरे पति तथा श्वशुर के पिंड का भी यही सहारा है। इसे जीवन देकर परलोकवासी अभिमन्यु का प्रिय कार्य करो। कृष्ण, मेरी बहुरानी उत्तरा अभिमन्यु की पहले की कही हुई एक बात अत्यंत प्रिय होने के कारण बार बार दोहराती है। अभिमन्यु ने कभी उत्तरा से स्नेहवश कहा था, कल्याणी, तुम्हारा पुत्र मेरे मामा श्री कृष्ण के यहां वृष्णि एवं अंधकों के कुल में जाकर धनुर्वेद सीखेगा, अस्त्र शास्त्र सीखेगा, संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेगा। वो अभिमन्यु के वचन इसके कान में गूंज रहे हैं। सुभद्रा कुमार की ये बातें निस्संदेह सत्य होनी चाहिए। मधुसूदन, इस कुल की भलाई के लिए मैं कितनी विनम्रता से कहूं, हम सब तुम्हारे पैरों में पड़कर भीख मांगती हैं। इस बालक को जिलाओ, वंश का नाश मत होने दो, कुरुवंश का कल्याण करो। यूं कहते कहते कुंती देवी दुख से व्याकुल होकर जमीन पर धड़ाम से गिर गई। जो जो कुंती देवी बोल रही थी, भगवान श्री कृष्ण कुंती को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे और भगवान के नेत्रों से अश्रुधारा बह चुकी। उन्होंने अपनी बुआ कुंती को सहारा देकर बैठाया, सांत्वनापूर्ण वचनों से धैर्य दिलाया। कुंती के बैठ जाने पर सुभद्रा अपने भाई कृष्ण की ओर देखकर फूट फूट कर रोने लगी और दुख से आर्त होकर बोली, भैया अपने मित्र पार्थ के इस पौत्र की दशा को देखो, अभिमन्यु का बेटा जन्म लेने के साथ मर गया। इस बात को सुनकर के धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे, भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव क्या सोचेंगे, आज द्रोण पुत्र ने पांडवों का सर्वस्व लूट लिया, कृष्ण इसमें तनिक भी संदेह नहीं, अभिमन्यु पांचों भाइयों का प्यारा था, उसके पुत्र की यह हालत सुनकर अश्वत्थामा के अस्त्र से पराजित हुए पांडव क्या कहेंगे, अभिमन्यु का पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो इससे बढ़कर हमारे लिए दुख की और क्या बात हो सकती है। कृष्ण यूं तो तुम सबके पूजनीय हो, लेकिन मैं तुम्हारी छोटी बहन हूं, मैं तुम्हारे चरणों में पड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूं। कुंती और द्रौपदी भी तुम्हारे पैरों में पड़ी हुई है, सबकी ओर देखो, और कोई बात हो सब बातों को तुम छोड़ करके इस पुत्र को जिलाओ। जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा पांडवों के गर्भ की हत्या का प्रयत्न कर रहा था, उस समय तुमने क्रोध में भरकर उस अश्वत्थामा को क्या कहा था कि ए ब्राह्मणाधम, तेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो पाएगी, मैं अर्जुन के पौत्र को अपने प्रभाव से जीवित कर दूंगा, तेरा ब्रह्मास्त्र मेरे प्रभाव के सामने नहीं चल सकता, ये बात मैं सुन चुकी हूं और तुम्हारे बल में मुझे कभी संदेह भी नहीं है, इसलिए चाहती हूं तुम प्रसन्न हो जाओ, अभिमन्यु के पुत्र को जीवन मिले। यदि प्रतिज्ञा करके भी तुम अपना वचन पूरा नहीं करोगे तो संसार में कौन अपने बात पर दृढ़ रहेगा। भैया तुम अपना वचन नहीं निभाओगे तो मैं तुम्हारे सामने प्राण दे दूंगी, यदि तुम्हारे जीते जी अभिमन्यु के बालक को जीवन दान न मिला तो तुम मेरे कब काम आओगे, किस काम में काम आओगे। जैसे बादल पानी बरसा कर सूखी खेती को भी हरी भरी कर देता है, उसी प्रकार तुम अभिमन्यु के मरे हुए बालक को जीवित करो। केशव तुम धर्मात्मा, सत्यवादी, सत्य पराक्रमी, तुम्हें अपनी कही हुई बात अवश्य पूरी करनी चाहिए। कृष्ण तुम चाहो तो मृत्यु के मुख में पड़े हुए तीनों लोकों को एक क्षण में जिला सकते हो, फिर अपने प्रिय भांजे के प्यारे पुत्र को जीवित करना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तुम्हारे प्रभाव को मैं जानती हूं, प्रार्थना करती हूं पांडवों पर अनुग्रह करो। भैया तुम्हारी बाहें बहुत लंबी चौड़ी, तुम्हारे हाथ लंबे चौड़े, क्या नहीं कर सकते। एक छोटी बहन की इतनी पुकार तुम्हारे हृदय में असर नहीं करेगी क्या। मेरा बेटा मर गया, मेरा पोता मर गया, इसलिए मैं दुखी हूं। जिसका बेटा मर गया वो आपकी शरण में दुखिया मां आई हुई, कभी कुंती से पूछा होगा कि कंस ने जब 6 पुत्रों को मारा तो मां तुम्हारे दिल में क्या बीती थी, उस मां से पूछते मां को कितना दुख हो रहा है। देवकी के यहां तो 6 पुत्रों के बाद तुम आए तो सही, यहां कहां जन्म होने वाला है, अभिमन्यु मर गया, मेरे पर दया करो, कृष्ण मेरे पर दया। भगवान श्री कृष्ण ने सबके करुण भाव को सुनते हुए कहा, आप लोग मुझे मेरे वचनों की याद दिलाकर बच्चे के जीवित रहने के लिए बोल रहे हैं, मैं अपने वचनों को भूला थोड़ी हूं। ये योग देखो, आज ही इसका जन्म होना, आज ही मेरा यहां आना किसके लिए हुआ है, चिंता मत करो। जैसे धूप से तपे हुए मनुष्य को जल से नहा लेने पर शांति होती है, ऐसे आप भी अब मेरे किए हुए पर ध्यान दो, शांति स्थापित करो। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा सबने कृष्ण पर विश्वास किया और उसके बाद श्री कृष्ण तुम्हारे पिता के जन्म स्थान अर्थात सूतिकागार में गए। वहां जाकर देखा कि छोटा सा बच्चा, पास में सफेद फूल की मालाएं, चारों ओर जल से भरे हुए कलश, तिंदुक नाम काष्ठ की आग जल रही है, घी में आहुति दी गई है, जगह जगह सरसों बिखरे हुए हैं, चमकते हुए तेज हथियार रखे हुए हैं, सब ओर आग प्रज्वलित है, सेवा के लिए बूढ़ी और युवती स्त्रियां मौजूद हैं, बड़े बड़े चतुर चिकित्सक गण भी वहां विराजमान हैं। इन सब के अतिरिक्त राक्षसों के भय का निवारण करने वाला बहुत सा पदार्थ समूह भी है, ऐसे ऐसे पदार्थ रखे हैं जिससे कोई राक्षसों की बाधा न आए। इस प्रकार सूतिका गृह को आवश्यक सामग्रियों से संपन्न देख भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया और कहा कि आपने बड़ा अच्छा प्रबंध किया है। उसी समय द्रौपदी बड़ी तेजी के साथ उत्तरा के पास जाकर बोली, कल्याणी आंख खोल के देखो, तुम्हारे ससुर के समान आदरणीय अचिंत्य आत्मा अपराजित पुरातन ऋषि भगवान मधुसूदन वासुदेव कृष्ण तुम्हारे पास खड़े हैं। अपने आंसुओं को तनिक रोक कर कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखो और इनकी मुस्कुराहट से अपने हृदय को भी प्रफुल्लित करो। उत्तरा ने आंसुओं को रोका, शरीर वस्त्रों से ढक लिया, कृष्ण को देखकर उसकी भगवत बुद्धि जागृत हुई और उस तपस्विनी बाला ने व्यथित हृदय से विलाप करते हुए कंठ से वो कहने प्रार्थना करने लगी, जनार्दन देखिए मेरे दिनमान कैसे हैं, आपके रहते हुए मैं पति से रहित हो गई थी और आज मैं संतान रहित हो गई हूं, जिसका पति भी न रहे और जिसका बेटा भी न रहे उस पर क्या बीतती है। मेरे पति अभिमन्यु तो पहले से ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, अभी उनका शोक का घाव सूखा ही नहीं और ये दूसरा शोक हो गया। हे मधुसूदन, आप मुझे यही कहोगे कि तुम्हारे किसी कर्म का फल है, तो क्या कोई भी कर्म का फल आपकी कृपा से कमजोर है या बलवान है? कृपा से कभी वो कमजोर हो सकता है? आप प्रसन्न हो जाइए। अश्वत्थामा की ब्रह्मास्त्र से दग्ध हुए मेरे बेटे को जला दीजिए, इस गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र से मार डालने का क्रूरतापूर्ण कर्म करके न जाने दुर्बुद्धि अश्वत्थामा ने क्या लाभ उठाया। इस गर्भस्थ बालक के साथ उस अश्वत्थामा की कौन सी दुश्मनी थी, शत्रुता थी। मैं आपके पैरों में पड़कर इस बालक के प्राणों की भीख मांगती हूं। यदि ये जीवित नहीं रहा तो फिर मुझे जीवित रहकर क्या करना है। इस बालक पर तो मैंने बड़ी बड़ी आशाएं रखी थी। स्वयं व्यास जी ने भी कहा था कि ये तुम्हारा पुत्र संसार में बहुत बड़ा नाम करेगा, सारे पांडु पुत्र को, पांडु वंश को तुम्हारा पुत्र उज्जवल करेगा, सारी पृथ्वी पर शासन करेगा, तुम्हारे पुत्र के द्वारा बड़ा विलक्षण कार्य होगा जो आज तक तुम्हारे वंश में नहीं हुआ। लेकिन अश्वत्थामा ने इन सब बातों पर पानी फेर दिया। मैं सोचती थी कि आपके भांजे के पुत्र को आपके चरणों में लाकर रखूं और आप बड़े प्यार से इसको गोद में उठाए, छाती से लगाए, मेरा तो सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया। मधुसूदन, चंचल नेत्रों वाले अभिमन्यु पर आपकी कितनी कृपा, कितना प्रेम। ये उन्हीं का बेटा आज ब्रह्मास्त्र की मार से मरा पड़ा है, आप इसको देखे तो सही। मैंने अपने पति के सामने प्रतिज्ञा की थी कि हे वीरवर, संग्राम भूमि में यदि आप मारे जाएंगे तो मैं शीघ्र ही शरीर त्याग कर आपके पीछे पीछे आऊंगी। लेकिन मेरे ससुरों के कहने पर, आपके समझाने पर, मैंने अपनी बात छोड़कर आप लोगों की बात मानी और मैं अपनी प्रतिज्ञा से हट गई। लेकिन अब मेरा समय यही है, इस समय मैं देह त्याग कर उनके पास जाऊंगी और उनको कहूंगी कि आप तो कहते थे कि तेरा बेटा कृष्ण की गोद में खेलेगा, उसको साथ लेकर आई हूं, आप ही गोद में रखो। इस प्रकार उस तपस्विनी उत्तरा ने पुत्र शोक से उन्मादिनी सी होकर कर्ण स्वर्प में मिलाप किया, पृथ्वी पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। होश आई तो मरे हुए बेटे को गोद में लेकर चिल्ला चिल्ला के कहने लगी, बेटा तू धर्मज्ञ का पुत्र है, फिर वृष्णिवंश के श्रेष्ठ वीर भगवान श्री कृष्ण को सामने देखकर तू प्रणाम क्यों नहीं करता है, उठकर खड़ा हो, कमल के समान नेत्र वाले जगदीश्वर श्री कृष्ण की मुख्य शोभा को देख। इस आंखों का यही फल है कि वह कृष्ण की शोभा को देखें, इन कानों का यही फल है कि कृष्ण के विषय में कुछ सुनो, तुम्हारी चंचल नेत्र, तुम्हारे पिता जो चंचल नेत्र वालों वाले थे वो भी इनको बराबर निहारते रहते थे कि मेरा मामा कितना सुंदर है, देखो। इस प्रकार विलाप करती हुई मत्स्य राजकुमारी उत्तरा ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उसका महान विलाप सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आचमन किया और अश्वत्थामा के चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को तत्काल शांत कर दिया। तत्पश्चात बालक को जिलाने की प्रतिज्ञा करके संपूर्ण जगत को सुनाते हुए उत्तरा से बोले, बेटी मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो अवश्य सत्य होगी। देखो मैं सबके देखते देखते इस बालक को जिलाता हूं। मैंने खेल कूद में भी कभी मिथ्या भाषण नहीं किया है, मैंने युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है। यदि ये बात मेरे जीवन में सत्य है तो सुनो, अभिमन्यु का ये बालक जीवित हो जाएगा। यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय हो, अभिमन्यु का पुत्र जो पैदा होते ही मर गया पुनः जीवन लाभ करे, यदि मुझमें सत्य और धर्म की निरंतर स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्यु का मरा हुआ बालक जी उठे। यदि कंस और केशिका मैंने धर्म के अनुसार वध किया हो तो इस सत्य के प्रभाव से इस बालक के शरीर में पुनः प्राण आ जाए। भगवान श्री कृष्ण जब ऐसा बोले सब चुप हो गए, इकटक भगवान की ओर देखने लगे और भगवान उस बालक को देख रहे थे। धीरे धीरे बालक के शरीर में चेतना आई, सांस चलने लगा और बच्चा हाथ पैर घुमाने लगा। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटा दिया उस समय सूतिकाग्री तुम्हारे पिता के तेज से देदीप्यमान होकर जगमग होने लग गया। फिर तो विघ्न डालने वाले राक्षस उस घर को छोड़कर गायब हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, केशव तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। साथ ही वे प्रज्वलित अस्त्र ब्रह्मलोक को चला गया, तुम्हारे पिता को पुनर्जीवन मिला। उत्तरा का वह बालक अपने उत्साह और बल के साथ हाथ पैर हिलाने लगा। यह देखकर भरत वंश की सभी स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने श्री कृष्ण की आज्ञा से ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करवाया। तुम सोचो उस समय वहां कितना आनंद हुआ होगा, लेकिन उस आनंद में वे कृष्ण को नहीं भूली और सब कृष्ण का गुणगान करने लगी। जैसे नदी के पार जाने वाले मनुष्य को नाव पाकर बड़ी खुशी होती है, उसी प्रकार कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा और कुरुकुल की अन्य स्त्रियों को बालक के जीवित होने से मन ही मन अपार हर्ष हुआ। श्री कृष्ण का स्तवन किया गया, उत्तरा बहुत प्रसन्न थी और उसने पुत्र के साथ कृष्ण को प्रणाम करवाया। छोटा सा बालक उसके यूं हाथ जुड़वाया। भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उस बालक के सिर पर हाथ फेरा, नाना प्रकार के उपहार दिए और फिर उसके बाद कृष्ण ने तुम्हारे पिता का इस प्रकार नामकरण किया। कुरुकुल के परीक्षीण हो जाने के बाद यह अभिमन्यु का बालक उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका नाम परीक्षित होना चाहिए। भागवत में अलग आता है, इसमें अलग आता है, कोई अंतर नहीं मानना। वो अपने अलग कल्प की कथा है, ये अलग कल्प की कथा है। वहां विष्णु रात नाम रखा था, मुख्य नाम वही है। जन्मेजय, इस प्रकार नामकरण हो जाने के बाद तुम्हारे पिता परीक्षित कालक्रम से अब धीरे धीरे बड़े होने लगे। उसको जो भी देखता उसका मन प्रसन्न हो जाता। तुम्हारे पिता की आयु जब एक महीने की हो गई उस समय पांडव लोग बहुत सी रत्न राशि लेकर हस्तिनापुर लौट आए। यदुवंशियों ने जब सुना कि पांडव नगर के समीप आ गए, उनकी अगवानी के लिए बाहर निकले। पूर्वासियों ने फूलों की वंदनवार, भांति भांति ध्वजाएं, पताकाएं फहराई, हस्तिनापुर को सजाया। अभी आ रहे थे वो उधर, उन्होंने अपने घरों की भी सजावट की। विदुर जी ने देव मंदिर में पूजा की आज्ञा दी, सारे राजमार्ग को अलंकृत किया। उस समय हवा के इशारे से हस्तिनापुर चारों ओर से सुसज्जित किया गया, सब जगह पताकाएं फहराई गई। पहले ऐसे लग रहा था कि पांडव भी शायद वही हूं, वहां नहीं थे अभी तो, वो लेके आ रहे थे सब पदार्थ लेके आ रहे थे। पांडवों के समीप आने की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों और मंत्रियों के साथ उनसे मिलने के लिए गए। आगे बढ़कर अगवानी की फिर पांडव और यदुवंशी वीरों ने एक साथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया। उस समय धन का खजाना आगे आगे, पांडव अपने मित्रों मंत्रियों सहित बड़े प्रसन्न, वे एकत्रित होकर सबसे पहले धृतराष्ट्र के पास गए, अपने अपने नाम बताए और उनके चरणों में प्रणाम किया। धृतराष्ट्र से मिलने के बाद गांधारी कुंती और विदुर जी का सम्मान करते हुए युयुत्सु से मिले, और उसके बाद तुम्हारे दादाओं ने तुम्हारे पिता का जन्म काल और सब घटनाएं सुनी, और श्री कृष्ण के अलौकिक कर्म को देखकर वे कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि कृष्ण कहां कहां तुमने हमारी रक्षा नहीं की है, तुम्हारे अलावा हमारा है भी कौन। थोड़े दिनों में सत्यवती नंदन व्यास जी भी हस्तिनापुर आ गए। पांडवों ने पूजन किया, वृष्णिवंशी अंधकवंशी वीरों के साथ वे बैठ गए, नाना प्रकार की बात हुई। धर्मनंदन युधिष्ठिर ने महर्षि व्यास जी से कहा, भगवान आपकी कृपा से ही रत्न आ गया है, अब आप अश्वमेध यज्ञ में इसका उपयोग करवाइए, इसके लिए आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है, हम सब लोग आप और भगवान कृष्ण के अधीन हैं। व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हें यज्ञ के लिए आज्ञा देता हूं, अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य पूरा करो, विधिपूर्वक दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करो, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ सब पापों से छुटकारा दिलाने वाला है, इसका अनुष्ठान करने पर निस्संदेह तुम्हारे मन में ऐसा लगता है कि इस युद्ध में मेरे से पाप हो गया, वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। व्यास जी के कहने पर राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया, प्रारंभ करने का विचार किया। महर्षि व्यास जी की आज्ञा लेकर भगवान कृष्ण के पास गए और कहा, पुरुषोत्तम हम आपके प्रभाव से अपने अधिकार में आए हुए उत्तम भोगों का उपभोग कर रहे हैं, आपने अपने पराक्रम और बुद्धि बल से संपूर्ण पृथ्वी को जिताया है, अतः आप ही यज्ञ की दीक्षा देकर इसका शुभारंभ कीजिए, क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं, यदि आप यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे तो हमारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, आप ही यज्ञ हो, आप ही अक्षर हो, आप सर्वरूप हो, धर्म प्रजापति संपूर्ण भूतों की गति आप हो, ऐसी मेरी निश्चित धारणा है। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज ये कथन आपके योग्य है, मेरा तो विश्वास है कि आप ही संपूर्ण प्राणियों को सहारा देने वाले हैं, क्योंकि आप धर्म से सुशोभित हैं, हम लोग आपके संग अथवा सहायक हैं, तथा जो आपको अपना राजा और गुरु मानते हैं हम उनसे बड़े प्रसन्न हैं, इसलिए आप हमारी अनुमति से स्वयं ही यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, हम लोगों में से जिसको जिस काम पर लगाना हो वो आज्ञा दीजिए, मैं आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं, आप जो कुछ कहेंगे वो सब काम करूंगा, आपके द्वारा यज्ञ होने पर भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव को भी यज्ञानुष्ठान का फल मिलेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा कि भगवान जब आपको यज्ञ आरंभ करने का ठीक समय जान पड़े उसी समय हमको यज्ञ की दीक्षा दे देना, क्योंकि मेरा यज्ञ अब आपके अधीन है। व्यास जी ने कहा कि जब यज्ञ का समय आएगा मैं ऋषि पायल और ऋषि याज्ञवल्क ये सब विधिपूर्वक आकर तुम्हारा काम पूरा कर देंगे, चैत्र की पूर्णिमा को तुम्हें यज्ञ की दीक्षा दी जाएगी। तब तक तुम अपने लिए और सामग्री इकट्ठी करो। अश्वविद्या के ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञ के लिए पवित्र अश्व की परीक्षा करें। जो अश्व निश्चित हो उसे शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा जाए और वह तुम्हारे देदीप्यमान यश को फैलाता हुआ समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी पर घूमता रहे। राजा युधिष्ठिर ने कहा बहुत अच्छा। ऐसा कहकर व्यास जी के कथनानुसार सब काम किया। उन्होंने मन में जिन जिन सामान वस्तुओं को एकत्रित करने का संकल्प किया उन सबको जुटा लेने के बाद महर्षि व्यास जी को सूचना दी, राजन हम लोग सब वस्तु के साथ आपके दीक्षा की प्रतीक्षा के लिए तैयार हैं। इसी बीच तुम सोने के खेय और कूर्च बनवा लो और जो भी स्वर्णमय सामान आवश्यक हो उन्हें तैयार करा डालो। व्यास जी ने कहा आज शास्त्रीय विधि के अनुसार अश्व को क्रम से पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ना है, ऐसी व्यवस्था करो जिससे वह सुरक्षित हो जाए। युधिष्ठिर जी का घोड़ा उपस्थित है, इसको इस प्रकार छोड़ा जाए जिससे वह समूची पृथ्वी पर घूम आवे, इसकी व्यवस्था अब आप ही बताइए। यह भी बताइए कि पृथ्वी पर स्वेच्छानुसार विचरने वाले इस घोड़े की रक्षा में किसको रखा जाए। व्यास जी ने कहा राजन अर्जुन सब धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, विजय में उत्साह रखने वाला, सहनशील, धैर्यवान, वे इस घोड़े की रक्षा कर सकते हैं, संपूर्ण भूमंडल को जीतने की शक्ति रखते हैं। इनके पास दिव्य अस्त्र, दिव्य कवच, दिव्य धनुष, दिव्य तरकस, अतः इन्हें इस घोड़े के पीछे रहना चाहिए। धर्म और अर्थ में कुशल तथा संपूर्ण विद्याओं में ये अर्जुन प्रवीण हैं। शास्त्रीय विधि के अनुसार घोड़े का संचालन करेंगे। अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी भीमसेन और नकुल ये दोनों वीर राज्य की रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं, अतः राज्य को देखेंगे और परम बुद्धिमान सहदेव कुटुंब पालन संबंध में समस्त सब कार्यों को जानने वाले समस्त कार्यों को देखेंगे। व्यास जी के इस प्रकार बतलाने पर युधिष्ठिर ने सारा काम वैसा ही किया और अर्जुन को बुलाकर घोड़े के विषय में आदेश दिया, वीर अर्जुन यहां आओ, तुम्हारे ऊपर इस घोड़े की रक्षा का भार है, इसका विधिवत पालन करो, तुम ही इसकी रक्षा करने में समर्थ हो, दूसरे किसी मनुष्य के द्वारा ये कार्य संभव नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, अश्व की रक्षा के समय जो राजा तुम्हारा सामने करने आवे उनके साथ भरसक युद्ध न करना पड़े ऐसा प्रयत्न करना, तथा मेरे यज्ञ का समाचार सब राजाओं को बतलाकर कहना कि आप लोग यथासमय यज्ञ में पधारो। समझा बुझा करके युधिष्ठिर ने अर्जुन को कह दिया, भीमसेन और नकुल को नगर का भार सौंप दिया। महाराज धृतराष्ट्र की सम्मति लेकर सहदेव को कुटुंब के पालन पोषण में नियुक्त किया। तदनंतर दीक्षा का समय आने पर व्यास और महान ऋत्विजों ने राजा को विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी और यज्ञ के लिए उनको नियत किया। अश्व को स्वयं ब्रह्मवादी व्यास जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार छोड़ा और अर्जुन ने उस घोड़े का पीछा किया। उसका रंग कृष्ण सार मृग के समान श्याम था। अश्व के पीछे चलते समय अर्जुन गांडीव धनुष को टंकारते हुए जाते थे। उनके हाथों में गोधा के चमड़े से बने हुए दास्तान पहने हुए। अर्जुन की यात्रा के समय बच्चे से लेकर बूढ़ों तक सारा हस्तिनापुर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। यज्ञ के घोड़े और उसके पीछे जाने वाले धनंजय को देखने की इच्छा से लोगों की इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि आपस की धक्का मुक्की से सबके बदन में खूब पसीने निकलने लग गए। उस समय मनुष्यों के कोलाहल से आकाश दिशाएं गूंज उठी। अर्जुन ने सुना बहुत से लोग कह रहे थे अर्जुन तुम्हारा कल्याण हो, तुम बड़े सुख से जाओ और कुशल पूर्वक लौट आओ। दूसरे कहते थे अर्जुन की यात्रा सुखमय हो, इस मार्ग में कोई कष्ट न हो, कोई भय न हो, ये निश्चय कुशल पूर्वक लौटेंगे। और उस समय फिर हम इनका दर्शन करेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनते हुए अर्जुन बढ़ रहे थे। याज्ञवल्क्य मुनि का एक विद्वान शिष्य जो यज्ञ कर्म में बड़ा चतुर, वेदों में पारंगत, विघ्न शांति के लिए अर्जुन के साथ गए। उनके सिवा और भी कई ब्राह्मण और क्षत्रियों ने धर्मराज की आज्ञा से पार्थ का अनुसरण किया। वह अश्व पांडवों के द्वारा अस्त्र बल से जोती हुई पृथ्वी के सब देशों में इच्छा अनुसार विचरण करने लगा। अर्जुन को शत्रुओं के साथ बड़े बड़े अद्भुत युद्ध करने पड़े, उनकी कथा सुना रहा हूं। यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी की दक्षिणा करता हुआ सबसे पहले उत्तर दिशा में गया, फिर अनेकों राजाओं में घूमता घामता पूर्व दिशा की ओर आया। महारथी अर्जुन पीछे चल रहे थे। उस समय जिनके बंधु बांधव मारे गए थे, ऐसे जिन जिन राजाओं के साथ अर्जुन को युद्ध करना पड़ा, उनकी मैं गणना कर नहीं सकता हूं। तलवार और धनुष धारण करने वाले बहुत से किरात, यवन और म्लेच्छ, जो पहले महाभारत युद्ध में पांडवों के द्वारा परास्त हो गए थे, उन्होंने देखा कि अब फिर मौका आया है, अर्जुन का सामना करेंगे। और उन्होंने कई बार अर्जुन के साथ युद्ध किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो त्रिगर्त वीर मारे गए थे, उनके पौत्रों ने अर्जुन के साथ बैर बांध लिया और उनके साथ बड़ा घमासान युद्ध हुआ। अर्जुन ने बार बार कहा, रे पापियों, लौट जाओ, जीवन अमूल्य है, इसको यो ही मत गुमाओ, मेरे से युद्ध करने पर तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन वो माने नहीं। देखो, मैं महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से आपको फिर अंतिम बार चेतावनी देता हूं, मेरा काम युद्ध करने का नहीं, आपको मारने का नहीं है। पांडवों का लक्ष्य एक ही है, कौरव सेना का जो युद्ध हुआ वो कुरुक्षेत्र में खत्म हो गया, उस बात को याद रखकर आप हमसे लड़े मत, यदि लड़ोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। उनमें से कई समझदार थे, वो तो लौट गए, पर कई लोग नहीं लौटे और वे अर्जुन को देखकर हंसने लगे। अच्छा, उस समय तो तुमने कृष्ण की सहायता से न जाने कितने कितनों को मार दिया, हम सब बदला लेंगे। अर्जुन ने फिर नम्रता से कहा, लेकिन वे माने नहीं और एक अर्जुन के ऊपर 100 बाण लगाए। अर्जुन कहां चूकने वाले थे, अर्जुन ने उन सबको युद्ध में पराजित कर दिया। प्राग ज्योतिषपुर में वज्रदंत के साथ युद्ध हुआ और वज्रदत्त वहीं पर मारा गया। सिंधु सैंधव वीरों के साथ युद्ध हुआ और फिर दुश्शला के कारण से वो युद्ध बंद हो गया। मणिपुर के राजा बब्रुवान को जब अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला, तो मणिपुर क्षेत्र में राजा बब्रुवान को जब अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वह ब्राह्मणों को आगे करके बहुत सा धन साथ में लेकर बड़े विनय के साथ दर्शन करने के लिए नगर से बाहर आया। मणिपुर नरेश को इस रूप में आते देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके उसका आदर नहीं किया, बल्कि कुपित होकर कहा, बेटा तेरा ये ढंग ठीक नहीं है, मैं महाराज युधिष्ठिर की यज्ञ संबंधी घोड़े की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूं, फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता है। दुर्मते, तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो चुका है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है, संसार में जीवित रहकर तूने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तभी तो युद्ध के लिए आए हुए जानकर भी तू शांतिपूर्वक यहां बैठा है। यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो तेरा इसी ढंग से आना ठीक था, लेकिन मैं जब शस्त्रों से युक्त होकर तेरी राजधानी में आया हूं तो तुम्हें भी मुझे ललकारना चाहिए था। उस समय जब बब्रुवान से उपयुक्त बातें हो रही थी, उसी समय ये हाल जानकर नाग कन्या उलूपी धरती चीरती हुई वहां पा पहुंची। उसने अपने स्वामी की कठोर बातें नहीं सही गई, इसलिए उसने बब्रुवान से धर्मयुक्त वचन कहा। ये उलूपी का एक पुत्र था बब्रुवान। बेटा मैं तुम्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हूं, मेरी बात मानो। तुम्हारे पिता कुरुवंश के श्रेष्ठ योद्धा हैं और वे युद्ध के मद से उन्मत्त रहने वाले वीर हैं। चलो इनके साथ अवश्य युद्ध करो, युद्ध करना इनका असली सत्कार होगा और ऐसा करने से तुम्हारे पर प्रसन्न होंगे। प्रभुवान ने माता की बात सुनी, मन में युद्ध करने का निश्चय किया। सोने का कवच पहनकर मस्तक पर शिरस्त्राण धारण किया, सैकड़ों तरकसों से भरा हुआ तुणीर ले लिया, युद्ध की सामग्री ले ली, मन के समान वेगवान घोड़ों से युक्त, चक्र और आवश्यक वस्तुओं से परिपूर्ण, सोने के भांडों से विभूषित, सिंह के चिन्ह वाली ध्वजा से सुशोभित और सोने के बने हुए परम उत्तम रथ पर सवार होकर अर्जुन पर धावा बोल दिया। निकट आने पर जब उस वीर ने पार्थ के संरक्षण में विचरने वाले यज्ञ संबंधी घोड़े को अश्व शिक्षा में प्रवीण पुरुषों के द्वारा पकड़वा लिया और कहा ले जाओ राजधानी में घोड़े को। घोड़े को पकड़ा देखकर धनंजय का चित्त अंदर से बड़ा प्रसन्न हुआ और वे रथ पर बैठे हुए अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे। राजा बब्रुवान ने वीरवर अर्जुन को विषैले सर्पों के समान जहरीले और तेज के हुए सैकड़ों बाणों से बींध कर उन्हें बार बार पीड़ित किया। जन्मेजय यह भी एक धर्म युद्ध था, पिता पुत्र का युद्ध हो रहा है और पिता और पुत्र दोनों प्रसन्नता से युद्ध कर रहे हैं। इस युद्ध की संसार में कहीं तुलना नहीं की जा सकती। आकाश में देवता लोग बदलों के पीछे छिपे छिपे इस युद्ध को देख रहे थे। बब्रुवान ने हंसते हंसते अर्जुन के गले की हंसली में एक बाण मारा। जैसे सांप अपने बिल में घुस जाता है उसी प्रकार वो बाण अर्जुन के शरीर में पंख सहित प्रवेश कर गया और उसे छेद करके वो पृथ्वी के अंदर समा गया। इस चोट से अर्जुन को बड़ी वेदना हुई। वे अपने धनुष का सहारा लेकर मुर्दे के समान निश्चेष्ट होकर गिर गए। थोड़ी देर बाद उनको होश आया तो अपने पुत्र बब्रुवान की प्रशंसा करते हुए बोले, बेटा तुम धन्य हो, चित्रांगदा नंदन। ये चित्रांगदा का बेटा था, चित्रांगदा नंदन, आज तुमने अपने योग्य पराक्रम दिखाया है। युद्ध तो मैंने बहुत किए, बाणों के घाव भी मैंने बहुत सहे, पर आज जैसा बाण तुमने मारा है मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। सावधान, अब मैं बाण मारता हूं, तुम स्थिर रहना। ऐसा कहकर अर्जुन ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। गांडीव धनुष से छूटे हुए वे नाराज इंद्र के वज्र के समान जान पड़ते थे, परंतु राजा बब्रुवान ने भल्ल मारकर उन सभी नारोंचों को दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए। यूं भल्ला ले पास में आने नहीं दिया। अर्जुन मुस्कुराए, फिर क्षुराकार दिव्य बाणों के प्रहार से बब्रुवान के रथ के सुनहले ताल वृक्ष के समान ऊंची स्वर्णमयी ध्वजा काट दी और घोड़ों को भी मार दिया। घोड़ों के मरने पर बब्रुवान रथ से उतर पड़ा और क्रोध में भरकर पैदल ही अपने पिता से युद्ध करने के लिए दौड़ने लगा। पुत्र का ऐसा पराक्रम देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाई। तब बब्रुवान ने देखा कि पिता युद्ध से विमुख है तो उन्होंने सर्प के समान जहरीले बाण से पिता को पीड़ित करना प्रारंभ किया। उसने बाल स्वभाव के कारण परिणाम पर विचार किए बिना ही पिता की छाती में एक तीखा बाण जोर से मार दिया। यह बाण अर्जुन के मर्मस्थल को छेद कर घुस गया, बहुत कष्ट देने लगा और उसकी चोट से घायल होकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए अर्जुन। बब्रुवान भी अर्जुन के बाणों के द्वारा घायल तो हो चुका था, इसलिए वो भी बेहोशी की हालत में पृथ्वी का आलिंगन कर रहा था। बब्रुवान की माता चित्रांगदा ने जब देखा कि पति और पुत्र दोनों धराशायी हो गए, तब उसने शंकित हृदय से रणभूमि में प्रवेश किया। वहां जाने पर उसे पतिदेव अर्जुन मरे हुए दिखाई दिए। उनकी अवस्था देखकर वह कांप उठी और शोक से संतप्त होकर विलाप करने लगी। चित्रांगदा पतिवियोग के दुख से संतप्त होकर बहुत विलाप करती हुई मूर्छित हो गई। फिर उसको होश आया तो उसने देखा कि नागकन्या उलूपी दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ी हुई है। उसे देखकर चित्रांगदा कहने लगी, उलूपी देखो, तुम्हारे कहने से मेरे पुत्र ने बाण मारकर समर विजयी अर्जुन की हत्या कर दी। तुमने क्यों इसको उकसाया? ये तो बेचारा लड़ना ही नहीं चाहता था। रणभूमि में मरकर पड़े हुए अपने स्वामी को आज तुम भी तो जी भर के देख लो। तुम तो श्रेष्ठ धर्म को जानने वाली बड़ी पतिव्रता हो ना, इसी से तुम्हारे पतिदेव आज तुम्हारे प्रयत्न से मारे जाकर रणभूमि में सो रहे हैं। उलूपी भी अर्जुन की स्त्री थी, चित्रांगदा भी थी। बहन, तुमसे मैं अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूं, तुम इन्हें जीवित कर दो। तुम्हें सब धर्मों का ज्ञान है, तुम्हारी तीनों लोकों में ख्याति है, तुम स्वामी को जिला सकती हो। मैं अपने बेटे के लिए उतना शोक नहीं करती, मुझे तो पतिदेव के लिए विशेष शोक हो रहा है, जिनका मेरे यहां इस प्रकार अतिथि सत्कार हुआ। ये देखो क्या हो गया। नागकन्या उलूपी से इस प्रकार कहकर यशस्विनी चित्रांगदा अपने स्वामी अर्जुन के पास आकर बोली, प्रियतम उठो, मैंने तुम्हारा घोड़ा छुड़वा दिया है। तुम्हें तो महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व के पीछे जाना है, ऐसे क्या जमीन पकड़कर एकदम सो गए हो? समस्त कौरवों के तुम प्राण हो, तुम तो दूसरों को प्राण देने वाले हो, आज तुमने कैसे प्राण त्याग दिया? फिर उलूपी से कहा, उलूपी, पतिदेव मरे पड़े, इन्हें अच्छी तरह से देख लो। तुमने बेटे को उकसाकर अपने पति की हत्या करवा दी, क्या इसके लिए तुम्हें शोक नहीं होता है? मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मेरा बालक चाहे सदा के लिए भूमि पर सोता रहे, किंतु निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन के जीवन की रक्षा होनी चाहिए। विधाता ने पति और पत्नी की मित्रता सदा रहने वाली एवं अटूट बताई है। पत्नी केवल पत्नी नहीं होती, वो मित्र भी होती है, वो प्राण देने वाली होती है, वो पति के लिए सब कुछ समर्पित करने वाली होती है। तुम्हारा भी तो इनके साथ संबंध है ना, तुमको जिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। सख्य भाव के महत्व को समझो और उपाय करो, जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य और सार्थक हो। तुम इन्हें बेटे को लड़ाकर मेरे पति की जान ली है, यदि आज पुनः इन्हें जीवित करके नहीं दिखा दोगी तो मेरे पति के साथ मैं भी अपना प्राण त्याग कर दूंगी। मेरे पति और पुत्र दोनों नष्ट हो गए, उनके बिना मैं अब जी करके क्या करूंगी? तुम यहां मुझे प्रायोपवेश के लिए बैठी हुई जान लो। प्रायोपवेश माने आमरण, उपवास, अनशन। उलूपी से ऐसा कहकर चित्रांगदा अनशन व्रत धारण करके चुपचाप बैठ गई। इधर राजा बब्रुवान को थोड़ा होश आया, अपनी माता को रणभूमि में देखकर दुखी होकर कहने लगा, हाय, जो अब तक सुखों में पली, मेरी माता चित्रांगदा आज मृत्यु के अधीन होकर पृथ्वी पर पड़े हुए अपने वीर पति के साथ मरने का निश्चय कर बैठी, इससे बढ़कर और क्या दुख होगा? संग्राम में जिनका वध करना दूसरों के लिए नितांत कठिन है, उन्हीं मेरे पिता अर्जुन को आज वह मेरे ही हाथों मौत के मुख में पड़े देख रही है। कैसा मेरी मां का ये दुर्दिन आया है, खराब दिन आया है। जान पड़ता है अंतकाल आए बिना किसी भी जीव का मरना बड़ा कठिन है। तभी तो इस संकट के समय में मेरे और मेरे माता के प्राण नहीं निकलते, धिक्कार है मुझे। ब्राह्मणों, मैं पिता की हत्या करने वाला क्रूर कर्मी महापापी हूं, बताओ अब मेरे लिए क्या प्रायश्चित है। नागराज की पुत्री उलूपी, देखो आज युद्ध में मैंने तुम्हारे स्वामी का वध किया है, शायद इसी से तुम्हारा प्रिय हुआ होगा, किंतु मां मैं तो सत्य की सौगंध खाकर कहता हूं अभी शरीर को धारण नहीं करूंगा। जहां मेरे पिता गए वहीं पर मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर बबलुवान ने दुख शोक से पीड़ित होकर आचमन किया और बड़े खेद के साथ इस प्रकार कहा कि संसार के चराचर प्राणियों सुन लो, माता उलूपी तुम भी सुन लो, आप सब लोग सुनो, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। यदि मेरा पिता नरश्रेष्ठ अर्जुन आज जीवित होकर नहीं उठे तो मैं इस रणभूमि में अपनी मां के साथ उपवास करके शरीर को सुखा डालूंगा। पिता की हत्या करके अब मेरे लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है कि मैं अनशन करके मरूं। ये पांडु पुत्र धनंजय महान तेजस्वी धर्मात्मा और मेरे पिता थे, इनका वध करके मैंने महान पाप किया है, अब मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। ऐसा कहकर अर्जुन कुमार बब्रुवान ने पुनः आचमन किया और आमरण उपवास का व्रत लेकर चुपचाप बैठ गए। उलूपी ने देखा कि अरे ये तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। उलूपी ने संजीवन मणि का स्मरण किया, नागों के जीवन की आधारभूत ये संजीवन मणि है, इसका स्मरण करते ही वो मणि वहां उपस्थित हो जाती है। उसे हाथ में लेकर के राजकुमारी नागराज कुमारी उलूपी ने बब्रुवान से कहा, बेटा उठो, शोक मत करो, अर्जुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं हुए हैं, ये मनुष्य मात्र के लिए अजेय हैं, इंद्र और देवता भी नहीं जीत सकते। मैंने तुम्हारे यशस्वी पिता का प्रिय करने के लिए केवल एक मोहिनी माया दिखाई है, तुम अपने द्वारा कोई पाप होने की रत्ती भर भी शंका मत करो। ये महात्मा नर पुरातन ऋषि सनातन अविनाशी हैं, यही अर्जुन बनकर के आए हैं, युद्ध में इंद्र भी इनको नहीं हरा सकते। लो ये दिव्य मणि लाई हूं, यह अपने स्पर्श से मरे हुए सर्पों को जीवित करती है, ले जाओ अपने पिता की छाती पर इसको रखो और देखो तुम्हारे पिता इसके स्पर्श से कैसे जीवित हो जाते हैं। आश्चर्य हुआ, विमाता ये क्या है। उलूपी के ऐसा कहने पर अमित तेजस्वी बब्रुवान ने बड़े प्रेम के साथ पिता की छाती पर वो मणि रख दी और ज्यों ही मणि रखी वीरवर अर्जुन देर तक सोने के बाद जगे हुए मनुष्य के समान जाग गए और अपने सामने बब्रुवान को देखा, क्या है कैसे हो। बब्रुवान ने प्रणाम किया, उसी समय इंद्र ने अर्जुन के ऊपर दिव्य फूलों की वर्षा की, उसी समय देवताओं की दुंदुभियां बिना बजाए बज उठी, आकाश में साधुवाद होने लगा। महाबाहु अर्जुन भली भांति स्वस्थ होकर उठ गए, खड़े हो गए, बब्रुवान को कहा इधर आओ। बब्रुवान को अपने छाती से लगाया, उसके मस्तक पर हाथ फेरा, उसके मस्तक को सूंघने लगे। इतने में ही उलूपी के साथ दूर खड़ी हुई बब्रुवान की माता पर उसकी दृष्टि पड़ी, जो शोक से दुर्बल हो गई। अर्जुन ने उलूपी से पूछा, कल्याणी इस रणभूमि में तुम्हारे और बब्रुवान की माता के आने का कारण क्या है, मुझसे या बब्रुवान से अनजान में तुम्हारा कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। या ये राजकुमारी चित्रांगदा ने तो तुम्हारा कुछ अपराध नहीं किया? ये प्रश्न सुनकर उलूपी हंस पड़ी, बोली, प्राणनाथ आपने या बब्रुवान ने मेरा कोई अपराध नहीं किया है, बब्रुवान की माता ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये तो सदा दासी के भांति मेरे आज्ञा के अधीन रहती है बिचारी। यहां आकर मैंने जिस प्रकार जो जो काम किया वो बतलाती हूं। सुनो, पहले आपके चरणों पर मस्तक झुकाकर प्रार्थना करती हूं कि मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ हो वह सब आपकी भलाई के उद्देश्य से हुआ है, इसलिए मेरे पर क्रोध मत कीजिएगा। महाभारत के युद्ध में शिखंडी की आड़ देकर जो आपने भीष्म का वध किया था, उस पाप की शांति के लिए वसुओं ने मुझे एक उपाय बताया था। पहले की बात है, मैं गंगा के तट पर गई थी। वहां भीष्म की मृत्यु के बाद देवता और वसु एकत्रित होकर स्नान करने गए। उन सब ने गंगा जी से मिलकर भयंकर बात कही, देवी शांतनुनंदन भीष्म दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे तो भी सब साथी अर्जुन ने उनका वध किया है, इस अपराध के कारण हम उन्हें शाप देना चाहते हैं, इसके लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। ये सुनकर गंगा जी ने कहा, हां ऐसा ही होना चाहिए। उनकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं पाताल में गई और अपने पिता से सब समाचार सुनाया कि देवताओं ने जाकर गंगा जी से समर्थन ले लिया है और वे अर्जुन को मारना चाहते हैं और उनको श्राप देना चाहते हैं। पिताजी को बड़ा दुख हुआ। मेरे पिताजी वसुओं के पास जाकर आपके लिए क्षमा याचना करने लगे। उनके बारंबार प्रार्थना करने पर वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा, महाभाग मणिपुर का तरुण राजा बब्रुवान अर्जुन का पुत्र है, वह संग्राम में खड़ा होकर जब अपने बाणों से उन्हें मार गिराएगा उस समय उनके सारे पाप धुल जाएंगे, अब तुम चले जाओ। वसुओं के ऐसा कहने पर मेरे पिता ने घर आकर मुझसे ये बात बताई। मैंने इस बात को अपने हृदय में रख लिया और मैं इसी चेष्टा में लगी रही कि मेरे पति का किस प्रकार पाप दूर हो। युद्ध में तो इनको देवराज इंद्र भी नहीं जीत सकते, पुत्र तो अपना आत्मा है, इसलिए उसके हाथ से या आपकी पराजय हुई उसमें आपका भीष्म पितामह का वध का पाप शांत हो गया। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, उलूपी तुमने जो कुछ किया है मेरे लिए कितना प्रिय कार्य किया, मेरे अंदर ही अंदर चोट थी, भीष्म को मारना मुझे बहुत कष्ट दे रहा था, आज तुमने मेरा इस प्रकार बब्रुवान से पराजित करवाना और पृथ्वी पर सुला देना, मृत्यु तुल्य बना देना, मेरे सारे पाप को हल्का कर दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। बेटा सुनो बब्रुवान, चैत्र की पूर्णिमा को महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, उस यज्ञ में तुम जरूर आना। पिता के स्नेहपूर्ण वचन सुनकर बब्रुवान की आंखों में आंसू आ गए। वे बोला, आपकी आज्ञा से मैं अश्वमेध यज्ञ में जरूर सम्मिलित होऊंगा और उसमें ब्राह्मणों के भोजन परोसने का काम मैं करूंगा। इस समय आपसे एक प्रार्थना है, आज मुझ पर कृपा करने के लिए अपनी दोनों धर्म पत्नियों के साथ इस नगर में प्रवेश करो, ये आप ही का घर है, इसमें एक रात सुखपूर्वक निवास करके कल सवेरे घोड़े के पीछे पीछे जाइएगा। ये सुनकर अर्जुन ने चित्रांगदा कुमार बब्रुवान से कहा, महाबाहु ये तो तुम जानते हो कि मैं दीक्षा ग्रहण करके विशेष नियमों के पालन पूर्वक विचर रहा हूं, इसलिए जब तक ये दीक्षा पूर्ण नहीं हो सकती तब तक मैं तुम्हारे नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। ये यज्ञ का घोड़ा है, मैं कोई घूमता फिरता थोड़े ही आया हूं। जब कभी यूं ही आऊं तब तुम्हारा ये आतिथ्य जरूर स्वीकार करूंगा। अभी घोड़ा जहां अपनी इच्छा अनुसार चलेगा, इसको रोकना भी नियम नहीं है। घोड़ा रुके तो मैं रुकूं, घोड़ा नहीं रुकता तो मैं कैसे रुकूं? तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं जाऊंगा, मेरे लिए ठहरने का कोई स्थान है ही नहीं। तदनंतर बब्रुवान ने अर्जुन की विधिवत पूजा की और फिर वे अपने दोनों भार्याओं की अनुमति लेकर वहां से आगे चल दिए। इसके बाद वो घोड़ा समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके पीछे की ओर लौटा। अर्जुन भी पीछे पीछे चले। रास्ते में उन्हें राजगृह नाम का एक नगर मिला। सहदेव का पुत्र मेघ संधि वहां का राजा था। उसने सुना कि अर्जुन मेरे निकट के यहां आए हैं, तो क्षत्रिय धर्म में स्थित होकर उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया। आओ पिताजी, आओ पिताजी तो नहीं, बाबाजी, बड़े बाप कल। अर्जुन का छोटे भाई का लड़का था ये, सहदेव का लड़का मेघ संधि। पैदल आते हुए अर्जुन पर धावा करके कहा, भारत, क्यों इस घोड़े के पीछे पीछे फिर रहे हो? मैं इसे अभी पकड़ कर ले जाता हूं, हिम्मत हो तो छुटाओ। यदि मेरे पूर्वजों ने कभी युद्ध में आप तुम्हारा स्वागत नहीं किया हो तो आज मैं पूरी करूंगा, स्वागत की तैयारी करूंगा, पूरा करूंगा, युद्ध करूंगा। मेरे द्वारा आज तुम्हारा सत्कार होगा, पहले तुम उस पर प्रहार करो, फिर मैं आप पर प्रहार करूंगा। अर्जुन बोला कि अरे भैया, मेरा व्रत तो यह है कि जो मेरे कार्य में बाधा डाले उसी को रोकूं। अच्छा, तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर पहले मेरे पर प्रहार करो, तुम छोटे भी तो हो। तो पहले मेघ संधि ने प्रहार किया, फिर अर्जुन ने बाणों की वर्षा की। अर्जुन के सारे बाण काट दिए। फिर मेघ संधि के ध्वज, पताका, दंड, रथ, घोड़े, रथ अंगों पर उन्होंने बाण छोड़े, किंतु राजा के शरीर और सारथी पर एक भी बाण नहीं लगा। मगधराज मेघ संधि इसको अपना पराक्रम समझने लगे और अर्जुन पर लगातार बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन बेतरह घायल भी हुए। उन्होंने क्रोध में भरकर अपने धनुष पर जोर से टंकार की, सारथी का सिर उड़ा दिया, घोड़े को मार दिया, फिर धनुष की टंकार कर एक क्षुराकार बाण छोड़ा और हस्तत्राण नष्ट करके उसकी ध्वजा पता को नष्ट किया। मेघ संधि को बड़ी पीड़ा हुई, गदा लेकर अर्जुन के सामने आया और धनंजय ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस प्रकार मेघ संधि रात धनुष गदा से वंचित हो गया। अर्जुन ने कहा, रे बेटा, क्षत्रिय के समाज तुमने पराक्रम दिखा दिया, अब तुम घर जाओ, अभी बालक हो और तुम युद्ध का अभ्यास करो। अभी तुमने अच्छा शौर्य दिखाया है, अच्छी बात है। हमको महाराज युधिष्ठिर ने कहा है कि युद्ध में राजाओं का वध करना, वध मत करना, इसलिए मेरा अपराध करने पर भी तुमको मैंने जीवित रखा है, जाओ अपने घर में जाओ। मेघ संधि को विश्वास हो गया कि इन्होंने मेरी जान बचा दी। तब वे हाथ जोड़कर आदर करने लगा कि पिताजी, मैं तो परास्त हूं, आपका कल्याण हो। बड़ों के सामने हारना ये छोटों का कर्तव्य होता है। कि कोई बात नहीं बेटा, अब आगामी चैत्र पूर्णिमा को तुम भी अश्वमेध यज्ञ में जरूर आना। कि बहुत अच्छा। फिर इधर आगे बढ़े, चेदी देश की तरफ गए तो शिशुपाल का बेटा सर्व था, वो आया, वो भी खूब युद्ध करने लगा। उसको भी खूब रोका और फिर उसको भी कहा कि भाई, चैसुदी पूनम को जरूर वहां युद्ध अश्वमेध यज्ञ में आना, उसी के लिए सब काम हो रहा है। गोकर्ण प्रभास क्षेत्र जगह जगह पर गए, इधर गंधार देश में भी गए। उस समय शकुनी का बेटा वहां राजा था, उनके साथ अर्जुन का खूब घमासान युद्ध हुआ और अंत में वो पराजित हो गया। उसको भी कहा कि अब भाई युद्ध की बात युद्ध में खत्म, तुमको भी चैत्र शुद्ध पूनम को वहां आना है कि अच्छी बात है महाराज आ जाएंगे। इस प्रकार सबको पराजित करने के बाद वे अपने नगर की ओर लौटने लगे, हस्तिनापुर की तरफ आने लगे। अब कल ये बब्रुवान वगैरह सब आएंगे और हस्तिनापुर के अंदर यज्ञ की तैयारियां चालू हो जाएंगी।
श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण श्रीमन्नारायण
Three.